ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 ॐ अज्ञानतिमिरान्धश्च ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविश्रं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वप्रदातिका वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगनारघुनाथान्वितां तं सजीवां साद्वैतां सावधूतां परिजनसहितां कृष्णचैतन्यदेवां श्रीराधा कृष्णपादां सहगनारलिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो कल आप सब ने रथ यात्रा में भाग लिया। हरि बोल,
हरि बोल,
जोर से
हरि बोल।
मतलब आप सुखी नहीं थे रथ यात्रा में। तो कल हम रथ यात्रा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे, तो आज भी थोड़े समय के लिए मैं सोच रहा था रथ यात्रा के वर्णन करो चैतन्य चरितामृत से। तो चैतन्य चरितामृत, हाँ, चैतन्य महाप्रभु का अमृतमय चरित्र है। तो चैतन्य महाप्रभु खुद अमृत को चखने के लिए आए थे और कोई व्यक्ति उनके चरित्र को पी लेता है तो कृष्णदास कविराज कहते हैं आध्यात्मिक रूप से रुष्ट पुष्ट हो जाता है। कौन चाहता है अपने आप को रुष्ट पुष्ट करना स्पिरिचुअली, है ना? तो बड़ा सरल है। कृष्णदास कविराज मध्य लीला का वर्णन करने के उपरांत लिखते हैं कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं तो केवल भगवत नाम रूप गुण लीला चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप इनको पीते नहीं हैं, इनको इनका चर्चा नहीं करते, इनको श्रवण नहीं करते, इनको कीर्तन नहीं करते। तो ऐसे भक्त कालांतर में या कुछ ही समय में निर्बल हो जाएंगे, उनके पास बल नहीं रहेगा आध्यात्मिक जीवन को आगे ले जाने के लिए। तो कृष्णदास कविराज ने कहा कि वास्तव में कोई व्यक्ति अपने आप को स्पिरिचुअली बलशाली करना चाहता है तो उसको चैतन्य महाप्रभु का ये जो अमृतमय चरित्र है या चैतन्य महाप्रभु के जो कार्यकलाप हैं इनको गंभीरता से श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को समझे बिना कृष्ण को समझना असंभव है। राधा कृष्ण पायते नाहि, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो राधा कृष्ण की प्राप्ति तभी संभव है जब हम चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का अनुशीलन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उनकी चर्चा करते हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ पुरी में निवास करते हैं, जैसे कि हम कई दिनों से सुन रहे हैं। पर महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का अंग कांति और उनका भाव को उन्होंने ग्रहण किया था और जो पुरी में रहते थे तो प्रेम विलास में वर्णन आता है कितना वो सदैव मदनमत्त हो जाते थे। महाप्रभु का शरीर कृष्ण प्रेम के भावावेश में इतने अधिक भारी हो जाता था, वो गंभीरा से बाहर एक कदम डालते थे तो यहाँ भूकंप आता था। क्या आता था? हाँ, आचार्यगण एक ग्रंथ है प्रेम विलास, उसमें जगन्नाथपुरी की लीलाओं का वर्णन करते हैं चैतन्य महाप्रभु के। तो उसमें कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम से इतने या श्रीमती राधा रानी के भाव का इतना अधिक आस्वादन करने में अपने आप को उन्होंने मग्न कर लिया था कि उनके भाव के लक्षण हृदय हैवी हो जाता है, भगवान के प्रति प्रीति का अनुभव करते हैं, हृदय क्या हो जाता है, प्रेम से भर जाता है, भारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कहते ना दुखी हो गया हूँ, हृदय भर गया है उसे, कहता है कि नहीं कहता? हाँ, तो भौतिक दुख का ये प्रभाव है, भौतिक दुख का ये लक्षण है। तो जो आध्यात्मिक अनुभूति है भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की भावना जब भक्त के हृदय में फ्लो हो जाती है तो उसका हृदय भर उठता है। चैतन्य महाप्रभु, सारे पूरी वासी चैतन्य महाप्रभु के नाम से कंप्लेंट किया करते थे, चिल्लाते रहते थे कि जब से ये महाप्रभु आए हैं तब से इन्होंने हमारा पूरी में जीना हराम कर दिया है। जगन्नाथ के पुजारी अपनी पूजाओं को छोड़कर महाप्रभु के पास आते थे, कहते चैतन्य आप ये रोको, क्योंकि जैसे पुजारी ब्रेसिंग करने जाते थे तो सब कुछ हिलने लगता था। तो क्यों? क्योंकि महाप्रभु के प्रेम के कारण और महाप्रभु का जो कृष्ण के प्रति प्रीति था, उनका एक एक कदम जब इस पृथ्वी में पड़ता था जगन्नाथपुरी धाम में उनके फाइनल डेज में, तो ये पृथ्वी कंपायमान हो जाती थी जैसे कि अर्थक्वेक आ रहा है। तो फिर एक दिन और बल्कि कई घर भी गिर जाते थे। तो लेकिन जगन्नाथपुरी के निवासियों का इतना प्रगाढ़ डिटर्मिनेशन है धाम में निवास करने का। कुछ लोग होते हैं जैसे ब्रज में निवास करते हैं, कुछ होते हैं जो ब्रज में फ्लैट खरीदी कर लेते हैं लेकिन मरते कहाँ हैं, दिल्ली के हॉस्पिटल में लेते, किस कारण कि हाँ धाम में। हाँ, क्या है वो एक गीत है ना कि यमुना का तट हो और तुलसी का दल मुख में हो, ऐसे कुछ है। तो ये भावना हर एक की होनी चाहिए, बल्कि हम सबको अपना डेथ प्लान लिख लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? डेथ प्लान, ये सबसे इम्पोर्टेंट कार्यकलाप है। आप भक्तिमय जीवन में लगे हो तो श्रील प्रभुपाद एक बंगला कहावत बोलते थे, साधन कर ले भजन कह ले मरते जान ले है, कि आपने कितना साधना किया, कितना भगवान का भजन किया, कितना भगवान की सेवा की, वो कब पता चलेगा? मृत्यु के समय। तो पूरे जीवन में हम कई प्रकार के प्लान्स योजना बनाते हैं, और ऐसे नहीं कि कुछ मैं अपनी मनगढ़ंत चीजें बोल रहा हूँ, डेथ प्लान लिखो, नहीं, आप भागवतम बोल के देखो, चैतन्य चरितामृत बोल के देखो, महाभारत देखो, रामायण देखो, वहां अलग अलग भक्तों ने अपना डेथ प्लान रिवील किया है। अब चैतन्य चरितामृत में देखो, हरिदास ठाकुर ने अपना डेथ प्लान रिवील किया था, किसके पास? श्री चैतन्य महाप्रभु के पास। चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि हरिदास ठाकुर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जब उन्होंने गोविंद को भेजा था प्रसाद लेकर, तो उनके पास आए, महाप्रभु से रहा नहीं गया, हरिदास ठाकुर से बहुत अधिक प्रीति वो रखते थे। चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास गए और उन्होंने कहा, हरिदास क्या बीमारी क्या है आपकी, बताओ मुझे। तो हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, मेरा मन ठीक है, मेरा, उन्होंने कहा, शरीर आदि सब ठीक है लेकिन मेरा जो मन और बुद्धि है वो ठीक नहीं है, बल्कि शारीरिक रूप से उनकी आयु 90 साल से अधिक हो गई थी हरिदास ठाकुर की। और महाप्रभु को वो कहते हैं कि मेरी एक ही बीमारी है, सब कुछ तो ठीक है लेकिन मैं संख्या ना है पूरा है, मतलब मैं जो हरिनाम कर रहा हूँ संख्या पूर्वक वो पूर्ण नहीं हो रहे हैं। माला का जो मैंने निर्धारित संख्या जप करना निश्चित किया है उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, इस प्रकार से वो रो रहे थे। और हम तो 16 माला में ही 16 स्पीड ब्रेकर महसूस करते हैं, पता नहीं वो एक शॉट मनके में भी कितने स्पीड ब्रेकर होते कि नहीं। थॉट्स होते हैं, मोबाइल रिंग्स होती हैं, और पता नहीं कितने प्लान्स क्या क्या होते हैं। हर मनके में एक जो मनके के बीच में गांठ होती है ना, वो हमारे लिए स्पीड ब्रेकर है। हम आगे बढ़ना हमारे लिए बड़ा टफ है। तो ये है हरिदास ठाकुर का इतना नार, ये वही बोल सकता है जिसके हृदय में हरि नाम के लिए प्रगाढ़ आसक्ति है। आप इमिटेट नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते। तो ये ऐसे जो उद्गार जो हम ये सब पढ़ रहे हैं कि मेरा जीवन बहुत पापी है, ये उसी के हृदय से निकलेगा वास्तव में जिसका हृदय बहुत शुद्ध हो गया है, नहीं अन्य के हृदय से नहीं निकल सकता। जिसका हृदय कंप्लीटली शुद्ध हो गया है, जिसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्रेम है, उसी व्यक्ति के वचनों से, क्योंकि जो वाणी कहां से निकल रही है, हृदय से। कई कई अर्थ है इसके, जैसे वो कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। तो लेकिन हमारे हृदय का भी इंडेक्स क्या है, हमारी वाणी है। हमारे मन में क्या चल रहा है वो हमारे वाणी से निकलता है, हमारा हृदय किस चीज में लगा है वो वाणी से प्रकट होता है। इसलिए हरिदास ठाकुर वगैरह ये जो आचार्य हैं, इनका जो भावना है बहुत उन्नत है, और हमें इसी की अभिलाषा करनी है, आकांक्षा करनी है। जब इनके इन वचनों को हम सुनते हैं, दोहराते हैं, पढ़ते हैं, तो नेचुरली वो जो भावना है हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाती है। भक्तों के गुण कैसे हमारे हृदय में आते हैं, उनके संग के द्वारा हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इसलिए भक्तों की महिमा को सुनना आवश्यक होता है। दुर्गुणों को सुनोगे तो आपके हृदय में दुर्गुण प्रवेश करेंगे। वैष्णव के सद्गुणों को आप विचार करते हो, विचार करेले पावे चमत्कार, आप विचार करते हो, मनन करते हो, तो बहुत अधिक दिव्य आनंद की अनुभूति करोगे। तो ऐसे हरिदास ठाकुर ने कहा कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरा ये प्रॉब्लम है, क्या मुझसे जप नहीं हो रहा है, माला पूर्ति नहीं हो रही है। प्रभुपाद उस तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तव में जिस भी भक्त की माला पूरी नहीं हो रही है दिन में 16, तो उससे समझना चाहिए कि वो डिजीज कंडीशन में है, बीमार अवस्था में वो घूम रहा है, बीमार अवस्था में वो चल रहा है। तो प्रयास तो यही होना चाहिए कि हम अपनी 16 मालाओं का जब उस दिन निश्चित कंप्लीट करें, और ये सोचना चाहिए है कि कल मुझे मौका नहीं मिलेगा 16 माला जप करने का, रात्रि में ही मेरी मृत्यु हो सकती है, आज का ये मेरा आखिरी 16 माला का कोटा है, ऐसा लगता है हमें, लगता है कि नहीं, हम तो सोचते पूरे जीवन मेरे पास पड़ा है, आज की माला क्या करना है, कल करेंगे, कल की परसों करेंगे। जैसे ही आदत आप एक माला छोड़ना शुरू करते हो, आप नीचे जाना शुरू हो जाता है, आपको इतनी भयावह आदत लगेगी कि आप अपने आप को रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए प्रयास ये हो कि हम अपनी 16 मालाओं को, चाहे मध्य रात्रि का 11:00 ना कितने मिनट हो जाए, 59.99 सेकंड, फिर भी क्या करें, पूरा करें। एक बार प्रभुपाद लंदन में थे, तो उस समय एक भक्त टेंपल डिवोटी बहुत बिजी था, पूरा दिन भर बिजी था, बिजी में तो कुछ कुछ कर रहा होगा, तो अपनी एक माला रह गई उसकी। तो प्रभुपाद वहां से गुजर रहे थे, आपकी माला हो गई, तो कहता है प्रभुपाद एक माला रह गई, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं कल करना चाहता हूँ। प्रभुपाद कहा, प्रभुपाद ने कहा, वो कहता मुझे समय ही नहीं मिला मुझे अपनी माला को पूरा करने के लिए, इतना मैं व्यस्त था। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारे खाने के लिए समय था क्या, ब्रेकफास्ट लंच और क्या होता है डिनर, सोने के लिए समय था, प्रभुपाद ने कहा वो कम करो, लेकिन आपकी जो रोज की जो 16 माला है उनको पूरा करो, क्योंकि ये कृष्ण के लिए, राधा कृष्ण के लिए आप पर्सनल सेवा कर रहे हो, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर। जीवन क्या है आगे, जीवन है मरण गति आर नाही मोर। ये गाना बड़ा इजी है लेकिन ये जो लाइन है राधा कृष्ण प्राण मोर, ये लाइन बहुत गहरा मीनिंग रखती है। और उससे आगे भी प्राण उसी के हो सकते हैं राधा कृष्ण, जिसने अपना गोल क्या बना दिया है, जीवन मरने गति, चाहे मैं जीवित रहूं या मैं मरूं, मेरे लिए राधा कृष्ण के अलावा दूसरी कोई गति नहीं है, गोल नहीं है, उनकी सेवा उनकी प्रसन्नता के अलावा मुझे कोई और चीज नहीं। तो हम देख सकते कि हम दिन भर क्या कार्य कितने कार्य करते हैं, सिंसियरली हम चेक करें कि राधा कृष्ण के लिए कितने और अपने लिए कितने कितने करते हैं, कितना मुश्किल है कि नहीं। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर कहते कि मुझसे माला नहीं हो रही है, महाप्रभु ने कहा तुम तो सिद्धि प्राप्त कर ली है, तुम तो निरंतर नित्य लीलाओं का चिंतन करते हो, अष्ट प्रहरी, आठ प्रहर का मतलब है 24 घंटे। जो उन्नत भक्त है जैसे नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा नित्य लीला स्पुरुक मोर मने, कब वो दिन आएगा कि मेरा मन हमेशा 24 घंटे राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का स्मरण करता रहेगा, चलता रहेगा नेचुरली स्वाभाविक रूप से, ऐसा प्रेयर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। तो वही जब हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुझसे ये हो नहीं रहा है, महाप्रभु ने कहा तुम तो सिद्धि को प्राप्त कर लिए, तुम्हें जब तक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे लिए तो हरि नाम स्वाभाविक हो गया है, जीवा एक सेकंड तुम्हारा रुकता नहीं है नाम उच्चारण किए बिना। हम जानते ना इनके बारे में, गोपाल गुरु गोस्वामी और कृष्ण प्रिया ठाकुरानी एक वैष्णवी थे जिनके जीवा कृष्ण नाम लिए बिना रहती नहीं थी, उनको भागवतम क्लास में बैठेगी तो वो अपने दांत में कई बार पकड़ के बैठना होता है। क्यों? क्योंकि ये जीवा क्या करते थे,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
लाउड
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे,
उच्च स्वर में
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्ण प्रिया ठाकुरानी अद्भुत वैष्णवी, जिनका वर्णन आता है कि किस प्रकार से वो बंगाल से आई और राधापुर में निवास करते थे, तो उनका जीवा रुकता नहीं था, कंटिन्यूअसली बोलते जाता था नाम नाम, इतना अधिक आसक्ति हो गया था। तो वैसे ही हरिदास ठाकुर के साथ है, लेकिन महाप्रभु ने कहा, फिर हरिदास ठाकुर ने कहा कि देखिए कि मुझे तो ये लग रहा है कि आप मुझसे पहले अपना प्रकट होने वाले हैं, और आप मुझसे पहले चले जाओगे तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ। महाप्रभु के प्रति इतना प्रेम हरिदास ठाकुर के हृदय में कि आपको देखे बिना आपका संग किए बिना तो कैसे मैं जीवित रहूंगा, आप प्रकट हो जाओगे तो उससे पहले मैं चाहता हूँ मैं अपना डेथ प्लान बताऊं आपको। कौन कहते हैं? हरिदास ठाकुर। क्या बताया उन्होंने डेथ प्लान? उन्होंने कहा, तो जैसे वो बोलने लगे हरिदास ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु कहते नहीं नहीं तुम तो इस पृथ्वी के एक महत्वपूर्ण हीरे हो, और तुम्हारे जैसे भक्तों को मैं कैसे खो दूं, तुम्हारा संग मुझे मिलकर वास्तव में तुम्हारे संग से मुझे सर्वाधिक आनंद होता है। कौन कह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। तो इतना ग्लोरियस है डिवोटी का पोजीशन। तो फिर काफी लंबा वार्तालाप होता है, हरिदास ठाकुर कहते हैं तो मैं तो एक चींटी के समान हूं, आपके पास तो बड़े बड़े भक्तगण है, राय रामानंद है, स्वरूप दामोदर है, परमानंद पुरी है, ब्रह्मानंद भारती है, नित्यानंद प्रभु है, जगदानंद है, ऐसे कई कई वैष्णव का नाम लिया। कहते मैं इन सब भक्तों के सामने एक चींटी के समान हूं, मेरी क्या तुलना करते हैं आप, पिपली का शिष्य में चींटी को पिपली का कहते हैं। तो कहते वो चींटी मर भी जाए तो किसको थोड़ी कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो हरिदास ठाकुर इतने उन्नत हैं, लेकिन उनके हृदय की भावना इस प्रकार की थी इसलिए चैतन्य चरितामृत कहता है उत्तम हैया आपन आके माने आधम। भक्त का लक्षण क्या है कि सर्वोत्तम स्थिति में होता है लेकिन वो अपने आप को हमेशा क्या करता है, अधम मानता है। उत्तम है या अपना के माने आधम। तो ऐसे हरिदास ठाकुर महाप्रभु के चरणों में गिर के रोने लगे। उन्होंने अपना डेथ प्लान बताया। क्या डेथ प्लान था? कहा कि हे श्री चैतन्य देव, आप मेरे इस निवेदन को स्वीकार कीजिए और मेरी एक इच्छा है। उन्होंने कहा आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति तो परम भगवान कृष्ण करने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु की खासियत थी, कोई भी डिवोटी उनको अप्रोच करता था किसी चीज के लिए तो वो सरल कहते थे कि कृष्ण की कृपा से ये हो गया है, कृष्ण ने आपको माया के गड्ढे से निकाल दिया है। स्वरूप दामोदर को भी, रघुनाथ दास गोस्वामी को भी वही कहा, फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको भी कहा, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को, उन्होंने कहा कृष्ण ने आप दोनों को ग्रह अंधकूप से निकाला है। बल्कि किसने निकाला था? चैतन्य महाप्रभु ने। सारा श्रेय महाप्रभु ने लेते थे। कहते थे कौन? कृष्ण। ये भक्त का लक्षण है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर ने जब ये चीज बोले कि मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं क्या करूं, जब शरीर को त्यागो तो मेरी जो आंखें हैं वो आपके सुंदर मुख कमल का दर्शन करें और मेरी जो जीवा है वो आपके श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उच्चारण करें और आपके जो दो चरण कमल हैं मैं उसको अपने छाती में धारण करूं, हृदय में धारण करूं। और इस प्रकार से मैं क्या करना चाहता हूं? अपना शरीर त्यागना चाहता हूं। एक किसका प्लान था? डेथ प्लान। तो आपको मैं एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, ट्रेन में मैं सबसे डेथ प्लान कलेक्ट करूंगा प्राइवेट। तो आपको एक पेज में अपना डेथ प्लान लिखना है। तो सब लोग तैयार है? डर तो नहीं लग रहा है? मैंने एक डिवोटी को पूछा था, उनको कहा आपका डेथ प्लान बताओ, और एक मित्र है उन्होंने शादी कलकत्ता में, तो कहते हैं कि मेरा डेथ प्लान यह है कि मैं एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूंगा, कहा कलकत्ता के क्रिकेट स्टेडियम है वहां, और जिसमें सारे फिल्म स्टार और सबको इनवाइट करूंगा, और जहां क्या होगा प्रभुपाद का गुणगान होगा, प्रभुपाद के ग्लोरीज के बारे में चर्चा होगी, यूथ कीर्तन होगा, और फिर ये सब होगा। तो फिर जब कर्टन बंद होगा तो ऊपर से एक टोकरी जैसा आएगा, उसमें मैं बैठ के आऊंगा और वहां शरीर त्यागूंगा। इस प्रकार से हमें सोचना चाहिए। प्रभुपाद भी आए, कहां आए शरीर त्यागने के लिए? वृंदावन। तो ऐसे हरिदास ठाकुर ने अपना डेथ प्लान बनाया और चैतन्य महाप्रभु को दिया। तो अल्टीमेटली हमारा ये कर्तव्य है। सैंक्शन कौन करेंगे? कौन? चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर ने ये प्लान बनाया और ये प्लान उनका क्या हो गया? सफल हो गया। कृष्ण के पास हिम्मत नहीं है कि अपने भक्त के प्लान को रिजेक्ट करे। वो अपने प्लान रिजेक्ट कर सकते हैं। महाभारत में हम सुनते हैं, हाँ भीष्म ने क्या कहा, पांडव रहेंगे या कृष्ण को अपना वचन भंग करना पड़ेगा। अस्त्र उठाऊंगा नहीं, उनको अस्त्र उठाना पड़ेगा। आज मैं इतना भयावह युद्ध करने वाला हूँ, या तो जब पांडव रहेंगे या तो कृष्ण को वचन तोड़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना घमासान युद्ध किया भीष्म ने। तो अभी देखा कि मरने वाले हैं अर्जुन वगैरह, कृष्ण उतर गए और चक्का जो पहिया था रथ का उसको उठाया, फेंकने लगे। उन्होंने जब ऐसे उठा के रखा कृष्ण ने, तो भीष्म को इतना आनंद आया। इसलिए कृष्ण का नाम क्या है, जब वो चक्का हाथ में लेके ऐसे खड़े हैं, उनको रथांग पानी कहा जाता है। कृष्ण को क्या कहा जाता है? रथांग पानी। पानी का मतलब है हाथ, जो रथ का जो अंग है चक्का है उसको हाथ में लेते हैं। उस मुद्रा में पसीना निकल रहा है, उनके वस्त्र ऐसे हवा से उड़ रहे, कितने सौंदर्य। तो ऐसे सौंदर्य को देखने की लालसा कौन कर रहे थे? भीष्मदेव। भीष्मदेव फिर खत्म, उन्होंने कुछ और बाण आदि नहीं चलाए। अभी जिसको उठाया उसको फेंकना भी तो पड़ेगा, कब तक भगवान उठा के रखेंगे। कहाँ फेंका उन्होंने? कुरुक्षेत्र से बंगाल, एक चक्र जो गांव है, जहां चक्र पड़ा उसका नाम एक चक्र हो गया। वहां किस कौन प्रकट हो गया? नित्यानंद प्रभु की जय। इस प्रकार से प्लान हमें बनाना चाहिए, और विशेष रूप से जो मृत्यु का प्लान है कि मैं मेरे जीवन में क्या करूंगा कृष्ण की सेवा के लिए, अंतिम समय कैसे त्यागना चाहूंगा। तो जब हम इस प्रकार की योजना बनाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वैष्णव और कृष्ण हमारी सहायता करते हैं। हाँ, जीवन में भी आप लिख सकते कि क्या करते हो, कृष्ण की सेवा का वो प्लान है, पार्ट डेथ प्लान का ही भाग है वो, या मृत्यु किस प्रकार से मरना चाहता हूँ। अभी कोई कहेगा है कि नहीं कितना ही उचित नहीं है, लोग आप भौतिक जो डिवोटी है उसको बोलो आप लिखो जरा एक पेज कैसे मरना चाहते हो, तो सीधा गालियां देना शुरू करेगा, कुछ और एक्सरसाइज नहीं मिले आपको। तो लेकिन ये हमारी बहुत प्यूरिफिकेशन, इससे हम महसूस, क्योंकि हम सोचे ही नहीं कभी, हम सोचते भगवान ने तो बोल दिया है, वैसे कृष्णा हमसे क्या चाहते प्लान, अंत काले चा मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरं। भगवान का प्लान हमारे लिए यही है, लेकिन रियली हम अपना प्लान कृष्ण के प्लान से मिलाना चाहते कि नहीं। मैच होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए, मैच करना, मैच करने के लिए तो ये सारा एक्सरसाइज है, श्रवण है, कीर्तन है, सर्विसेज है, यात्रा है, यहाँ आने का उद्देश्य क्या है कि वो प्लान हमारा पूरा हो। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर भी ये योजना बनाते हैं। तो इस प्रकार से रथ यात्रा में आप सबने भाग लिया था और अच्छा भी रहा होगा, हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि हर एक क्या है, इंडिविजुअल सोल है, स्वतंत्र जीव है। तो रथ यात्रा के बारे में चैतन्य महाप्रभु की कई सारी लीलाएं आती हैं। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो उनके हृदय में इतना भावावेश आता था कि बहुत सारे भूकंप होने लगते थे। आप तो भूल ही गए होंगे क्या भूकंप की भी शुरुआत में चर्चा कर रहे थे। हाँ, तो जब ये भूकंप हो रहे थे तो सारे नवदीप ये जो पुरी वासी गए उनके पास, और इनका बहुत घर भी टूटते रहते थे इनके, लेकिन कभी धाम को त्यागते नहीं थे। तो धाम के प्रति आसक्ति जागृत करना, धाम में आने से क्या होता है, बारंबार आप धाम के प्रति एक लगाव महसूस करते हो, प्रगाढ़ प्रगाढ़ लगाव, धाम को अपना घर समझने लगते हो। वो इसलिए तो क्यों ये धाम क्यों अवेलेबल किए हैं भगवान ने, वृंदावन है, मथुरा है, बद्रीनाथ है, रामेश्वरम है, श्रीरंगम है, जगन्नाथपुरी आदि है, क्यों यहाँ क्यों छोड़े भगवान ने, क्यों? क्योंकि हमारा असली घर धाम है, हमारा असली जो स्थान है ये धाम है। जब हम बार बार धाम विजिट करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसके प्रति एक आकर्षण जागृत होता है, और हम फिर आध्यात्मिक जो धाम है वहां जाने की आकांक्षा तीव्र हो जाती है हमारे हृदय में। तो चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको समझाया सारे नवदीप पुरी वासियों को, नहीं नहीं आगे से नहीं होगा, अपने भावों को उष्ण करने लगे। तो इसी प्रकार से जगन्नाथ स्वामी है, जगन्नाथ देव रथ यात्रा के दिन बाहर निकलते हैं। सनातन गोस्वामी अपने ग्रंथ बृहद भागवतामृत में लिखते हैं, एक विशेष लीला का वर्णन करते हैं, और वो लीला क्या है, सनातन गोस्वामी के हृदय में वो प्रकट हुआ है, वो जो दिव्य लीला है कि क्यों बलराम का रथ, क्यों इन तीनों का इंडिविजुअल रथ है, क्यों ये तीनों एक रथ में है, क्यों तीनों एक रथ में नहीं है, क्यों बलराम आगे जा रहे हैं, क्यों उनके पीछे कौन जा रहे हैं, सुभद्रा देवी, क्यों वो अकेले जगन्नाथ जा रहे हैं। और वो जगन्नाथ भी जब अपने श्री मंदिर को छोड़ते हैं, जगन्नाथ मंदिर का नाम क्या है, श्री मंदिर, श्री मीन्स कौन, लक्ष्मी, जिन कंट्रोल्ड में है वो मंदिर, किसके कंट्रोल में है, वहां जगन्नाथ जी का कुछ नहीं चलता, वो तो बाहर आके यहाँ चलता है, उनका राज तो वृंदावन में है एक्चुअली, है ना, वहां तो कंट्रोल्ड बाय होते हैं, कंट्रोल्ड बाय लक्ष्मी देवी, कंट्रोल्ड बाय समोनास। तो लेकिन यहाँ जब वो निकलते बाहर भक्त सुख देते। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि 15 दिन का बहाना लेकर एकांत में रहना चाहते थे लक्ष्मी के साथ, क्योंकि सदैव लक्ष्मी देवी अलग मंदिर में है और भगवान जगन्नाथ भी क्या है, अलग मंदिर में। ये एटिकेट्स है, ये एटिकेट्स है कि ओपनली फ्रिक्वेंटली नहीं मिलना चाहिए सबके सामने बहुत अधिक। आजकल तो मॉडर्न डेज एटिकेट्स खत्म हो गए, पति पत्नी को बहुत अधिक बीच में क्या कहते हैं, समाज के बीच में क्या नहीं होना चाहिए, फ्रिक्वेंटली टॉक नहीं करना चाहिए, ये वही एटिकेट्स हैं। तो इसलिए दक्षिण भारत में भी आप जितने मंदिरों में जाते हो वहां नारायण और लक्ष्मी कभी एक साथ नहीं है, ये वैदिक कल्चर है। तो उसी प्रकार से लक्ष्मी भी अलग निवास करती है और यहाँ जगन्नाथ भी अलग निवास करते हैं। तो फिर भगवान सोचते कि बहुत लंबा समय हो गया, हाँ तो क्या करना है, तो भगवान ये बहाना बनाते हैं बुखार आदि का और लक्ष्मी को अपना समय देना चाहते हैं। इस मटेरियल वाले हर एक व्यक्ति समय चाहता है, नहीं कि आप मुझे समय नहीं दे रहे हो इसलिए तो ट्रबल्स होती है। तो भगवान ने सोचा, जगन्नाथ भी सोच रहे थे कि नहीं समय नहीं दूंगा तो फिर प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ट्रिक बनाता हूँ, योजना बनाता हूँ, आपको समय दे दूंगा। तो उन्होंने 15 दिन बीमारी का बहाना बनाया और फिर एकांत में लक्ष्मी के साथ निवास करने लगे। और 15 दिन वो रहते हैं और फिर लक्ष्मी देव का परमिशन लेकर वो निकलते हैं। किस चीज के लिए निकलते हैं, एक ही उद्देश्य है, भक्त सुख देते, केवल भक्तों को सुख देने के लिए जगन्नाथ जी बाहर निकलते हैं, रथ के ऊपर सवार होते हैं। तो आप सबने, कुछ लोगों ने वहां देखा होगा या आप सबने कुछ टीवी में देखा ना कल, कि भगवान कैसे आ रहे थे, जैसे कोई पियकड़ है, पियकड़। और शास्त्र ने जगन्नाथ को जब मंदिर से निकलते हैं उनको सीधा बोला गया है, तो एक शराबी है। तो जगन्नाथ जैसे अपने गर्भगृह को छोड़ते हैं तो वैसे ही वो पागल की भांति हो जाते हैं और उस फेस्टिवल को पांडी विजय या पौंडी या पांड्या विजय कहते हैं। ओरिजिनली ये जो रथ यात्रा का शुरुआत है, दक्षिण भारत के एक राजा थे, क्योंकि जगन्नाथ को बुद्धिस्ट लोग लेके भाग गए थे, तो पांड्या विजय ने, पांडु विजय जो राजा हैं, पांडे विजय दक्षिण भारत में राजा थे, उन्होंने जगन्नाथ को वापस लाया और उनका एक फेस्टिवल शुरू किया, उनको उठा के ले जाना, तो उनके नाम से ये पौंडी विजय कहलाया। इसको विजय उत्सव भी कहा जाता है। तो महाप्रभु अपने भक्त का हाथ पकड़ के दौड़ते हुए जाते थे, चलो 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 मुझे वो विजय उत्सव का दर्शन करना है, आगे जाते थे। और महाप्रभु को अच्छा लगता था जो भगवान कैसे आ रहे हैं, ऐसे थोड़ा डांस भी नहीं कर रहे हैं, जैसे शराबी मदन मत्त हो जाता है, उसको कोई भान नहीं रहता कि मैं कैसे चल रहा हूँ, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है। तो महाप्रभु को बहुत आनंद आता था और महाप्रभु देखते थे कि बड़े बड़े हट्टे कट्टे जो दैतापति हैं, दैतापति जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, दैत का मतलब है जो प्रिय है, तो ऐसे दैतापति जो बहुत बलशाली हैं, बलवान है। आपने देखा पंडाल का शरीर कैसे था, आप नजदीक नहीं थे वहां, इन्होंने देखा। तो सारे महाप्रभु इन दैतापतियों का गुणगान करते थे कि कितना हट्टा कट्टा शरीर है इनका और कितना सेवा कर रहे हैं, उनको कोई पीछे से उठा रहा है, जगन्नाथ को कई प्रकार से वो उठाते हैं और पीछे उनके यहाँ क्या करते हैं, रस्सी बांधते हैं, दो रेशम का रस्सी। महाप्रभु अपने नवदीप के भक्तों को सेवा देते थे कि रथ यात्रा आ रहा है, तुम क्या करना, वो रेशम की रस्सी लेके आना जगन्नाथ के लिए, खाली हाथ मत आना, ऐसे सेवा देते। किसी को कहते थे पीलो लेके आना, क्योंकि जगन्नाथ को जब गर्भगृह से उठा के ये पांडी विजय किया जाता है तो रखते हैं, आजकल तो पता नहीं रखते कि नहीं नीचे, लेकिन महाप्रभु के समय में कुशंस रखे जाते थे बड़े सॉफ्ट, कि जगन्नाथ को उठा के जब वहां रखते थे कुछ समय के लिए तो फट जाता था। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया है कि सारे जो क्या होते कुशन के अंदर रुई सब जगह फैलती थी, शुभ्र सब स्थानों में, तो महा और आवाज आता था जोर से, और महाप्रभु बहुत गुणगान करते थे। तो ऐसे विजय उत्सव को देखने के लिए, पहाड़ी को देखने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के संग में दौड़ते थे आगे, और वो देखते थे कि महाप्रभु या चैतन्य जो जगन्नाथ है वो बिल्कुल कोई शराबी के भांति चल रहे हैं, मतलब ओवरफ्लो हो जाता है ना, शराब बहुत ज्यादा पी ली तो फिर कांट कंट्रोल, आपका अपने चलने में भी कुछ वो नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, तो आपको फिर लोगों ने क्या किया होता है, पकड़ा होता है। तो जगन्नाथ के साथ वही है, लेकिन जगन्नाथ ने कौन सी मदिरा का पान किया है, शास्त्र कहते हैं राधा रस मदिरा। कौन सी मदिरा? राधा रस मदिरा। कि जगन्नाथ वास्तव में रथ के ऊपर इसलिए बैठते हैं केवल श्रीमती राधा रानी को आनंद देने के लिए, प्राइम कारण है, गौण या दूसरा कारण है बाकी हजारों भक्तों को आनंद देने के लिए। थर्ड क्या है कि जो भी उनको देख रहा है उनको दर्शन देके उनको लिबरेट करने के लिए। लेकिन प्रमुख जो भावना है मंदिर को छोड़ के सुंदराचल आने का, वो केवल क्या है, श्रीमती राधिका को दिव्य आनंद की अनुभूति प्रदान करना। तो ऐसे जगन्नाथ देव राधा रस मदिरा को बहुत पीते रहते हैं, और इसी कारण से उनको बहुत कठिन होता है, वो अकेले छोड़ो तो नहीं चल सकते, गिर सकते हैं, और इतना उन्होंने पिया होता है। कल हम देख रहे थे, नजदीकी थे वहां, रियली लगी रहा था मुझे, तो ये याद ही आ रहा था बार बार, राधा रस मदिरा। तो वहां भगवान जब उनको इतने लगभग 200-300 लोगों ने पकड़ा है और उनको ऊपर ले जा रहे हैं, फिर कभी यहाँ गिर रहे हैं तो कभी वहां गिर रहे हैं तो कभी पीछे गिर रहे हैं, फिर रस्से से उनको खींच रहे हैं, और पंडित तो गालियां भी देते हैं, शराबी जब सुनता नहीं तो थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है ना, अफेक्शन है, प्रेम का लक्षण है पंडाओं का। तो कैसे वैसे वो चले गए और ऊपर बिठाए रहे थे तभी भी गिर रहे थे, जो फाइनली ऊपर गए जगन्नाथ तभी भी गिरने वाले थे, मतलब बहुत कल तो ज्यादा है इसलिए वो रुक गए, इसलिए क्या हो गए, हम रुक गए, इतना अधिक भावावेश। तो ऐसे जगन्नाथ देव या कृष्ण सदैव श्रीमती राधे रानी के विरह में और प्रेम में मग्न रहते हैं। तो वही क्यों, ये क्या कारण क्या है, कल हमने इस पर थोड़ा सा चर्चा किया था कि किस प्रकार से वो आसक्त है ब्रजवासियों से, तो हम थोड़ा एक लीला सुनेंगे सनातन गोस्वामी के द्वारा कि कैसे ये रथ अलग अलग निकलते हैं, क्यों बलराम जी जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं इस विशेष लीला का, जिसमें वो कहते हैं कृष्ण ने जब मथुरा को छोड़ा और कृष्ण जब द्वारका आए तो वहां आकर कृष्ण सदैव ब्रजवासियों के विरह में रहा करते थे। जैसे मैंने कल भी कहा, कृष्ण जब रात को सोते थे तो कभी कभी रुक्मिणी के वेणी, क्या कहते हैं इसको, वेणी छोटी छोटी, तो प्रभु जिसका होता है माताओं को क्या होता है, वेणी छोटी कहते हैं, राधा रानी का ऐसे थोड़ी कहते, कमल ने पढ़ा नहीं कि राधा रानी का छोटी था, वेणी वेणी कहते हैं, I don't know, जैसे त्रिवेणी है, तीन नदियां, अब स्त्रियों के बालों में तीन बार वो करते हैं ना, 1-2-3, तो त्रिवेणी नदी से वो त्रिवेणी, वेणी का मतलब वही है, हम इसको वेणी कहते हैं शास्त्र में। तो ऐसे कृष्ण जब सोया करते थे तो कभी कभी रुक्मिणी का वेणी खींचते थे और वो कहते थे ओ राधिका ओ ललिता, अभी ये पागल हो गई मेरी मेरी खींच रहे हर किसको बुला रहे, ओ राधिका ओ ललिता आ रही हो आप। और फिर एक दिन क्या हुआ कि कृष्ण इतने अधिक ये हो गए, रोने लगे, इतना रोने लगे कि रुक्मिणी ने देखा कि उनका जो बेड का जो पिलो है बिल्कुल ऐसे भर गया था, उनके आंसुओं से गिर रहा था और मूर्छित हो गए, क्या हो गए, मूर्छित हो गए, रोते रोते आंखों से आंसू बह रहे थे, मूर्छित हो गए, इतना टेंशन आ गया रुक्मिणी देवी को। तो उसी समय टेंशन लेने वाले दूसरे भक्त आ गए, नारद नारद अमेजिंग पर्सनालिटी है, उनके बारे में आप कितनी चीजें पढ़ सकते हो या लिख सकते हो या बोल सकते हो, पूरा भागवत सत्ता कर सकते हो। नारदा ने कैसे प्रॉब्लम्स खड़े कर दिए, कहां कहां भक्तों के जीवन में, भगवान के जीवन में, सबको ट्रबल में डालते हैं और खुद आनंद देते हैं, क्या करते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे।
प्रभुपाद कहते थे नारद जैसा लाइफ होना चाहिए। हाँ, उसको स्पेसमैन कहा गया है, प्रभुपाद ने उनको स्पेसमैन कहा गया है। तो कोई चिंता ही नहीं है, कहाँ भ्रमण करो, द्वारका जाओ, मथुरा जाओ, जगन्नाथ पुरी जाओ, भ्रमण करते थे स्पेसमैन। और कुछ भी घटना नया कुछ देखकर के आगे कुछ एक्साइट क्या कहते हैं एक्साइटमेंट करने वाली चीजें नहीं हो रही है कृष्ण लीला में यहाँ। तो ये कुछ ना कुछ जाके कभी कंस को कुछ बोल के आ जाएंगे, कभी द्वारका में जाके कुछ सत्यभामा को बोल के आएंगे, मतलब कभी वो फूल दे के आ जाएंगे सारे बैठे होते वहां कृष्ण रुक्मिणी आदि। और फूल पारिजात फूल किसी ने उनको दिया वहां स्वर्ग से, वो लेके आ गए कृष्ण के पास, अभी सत्य रुक्मिणी बैठे हैं, कहते कि आपको मैं दे रहा हूँ, आपका जो सबसे प्रिय है उसको दे दीजिए। आपकी पत्नी नजदीक बैठी है और रुक्मिणी, क्या हिम्मत है भगवान की बोलने की, इससे और कोई प्रिय है मुझे, तो उनको दे दिया। तो सत्य मामा के पास भी आपको पता नहीं क्या घटना हुई थी। नारद इतना अमेजिंग पर्सनैलिटी है, नारद नहीं है इस कृष्ण कथा में तो रस नहीं है, चाहे ब्रज हो, द्वारका हो, मथुरा हो, हर हर जगह। इस प्रकार से जब ये हुआ कृष्ण मूर्छित हो गए तो नारद आ गए और नारद को सेवा देती, कि नारद को सेवा क्या देती, सारे ऋषि मुनि एकत्रित होकर उन्होंने कहा था आप ढूंढो कि जो सबसे अधिक कृपा किसने प्राप्त की है, कौन टॉप मोस्ट डिवोटी है। तो नारद अलग अलग भक्तों के पास जाते कहते हैं आप ना बहुत ज्यादा कृपा आपको मिली है भगवान की, वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे कहाँ कृपा मिली है। ऐसे ही अलग अलग शिव जी के पास जाते हैं, हनुमान के पास जाते हैं, पांडवों के पास जाते हैं, यादवों के पास जाते हैं। यादव कहते हैं हमारे ऊपर इतनी कृपा नहीं जितनी उद्धव के ऊपर है, उद्धव तो कोई भी चीज खाता नहीं है बाहर की, केवल अंदर की चीज खाता है। और क्या वास्तव में उद्धव का जीवन केवल वो कृष्ण का उच्चिष्ट खाते थे, ऑफर करने की आवश्यकता नहीं होती थी। कृष्ण किसी को देते नहीं थे अपना उच्चिष्ट जब द्वारका में होते थे, लेकिन एक भक्त उनके थाली लेके खा सकता है, कौन थे, उद्धव। और उद्धव ने कभी अपने लिए नए कपड़े नहीं सिलाए, किसके कपड़े पहनते थे, हाँ। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं माया से बचने का सरल उपाय है कृष्ण की यूज की हुई वस्त्र, कृष्ण का उच्चिष्ट, जो भी कृष्ण ने यूज किया है उसी को धारण करो, उसका मतलब ऑफर करो। इन चीजों को जितना हम अधिक यूज करते हैं उतना ही हम बच, ये हमारे लिए कवच है, उतने हमारे रक्षा होती है। तो उद्धव के पास नारद गए, नारद ने उनको प्रणाम किया, कहते नहीं नहीं आप नहीं जानते कौन अधिक प्रिय है, ये सारी रानियां प्रिय हैं। तो रानियों के पास जाकर तो रानियां तो वैसे रो रही थी, रानियों ने कहा हमारा चलता नहीं है, कौन उनका अधिक प्रिय है, वृंदावन के लोग। तो जब कृष्ण अनकॉन्शियस हो गए तब इनको जगाए कैसे, नारद ने कहा मेरे पास एक युक्ति है, उठाया उनको वहां से। द्वारका में दो चीजें बनाई गई थी, एक था नव वृंदावन, जैसे डायग्रामास बनाते हैं ना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते कि हाँ। तो द्वारका में विश्वकर्मा के द्वारा नव वृंदावन बनाया था, एग्जैक्ट वृंदावन की रेप्लिका, गोवर्धन पर्वत, राधा कुंड, श्याम कुंड, सारे द्वादश वन, और स्टैचू भी थे, नंद महाराज, यशोदा, गाया गायों के पीछे सारे गोचरिए जा रहे हैं, द्वार वगैरह जा रहा है, ऐसे दूर दूर था। तो कृष्ण को वहां ले गया, ले जाया गया। तो कृष्ण उठेंगे तो सबसे पहले वो कहां भागना चाहेंगे, नारद ने सोचा कि ये जब उठेंगे तो ये वृंदावन भागेंगे, इनको उठाना बड़ा कठिन है, इसलिए उठाए कि ना उठाए, मूर्छित हो गए थे, सब रो रहे थे एक प्रकार से। तो नारद ने कहा कि मैं अपनी जो वीणा है उसके ऊपर गान करता हूँ कृष्ण लीला का, ब्रज लीला कहानी का, तो उसे क्या होगा कि तुरंत कृष्ण उठेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, उठते कृष्ण वृंदावन भागेंगे और सीधा वो वृंदावन जाएंगे तो फिर ब्रजवासी उनके भी उनको देख के अचानक स्थिति में वो स्ट्रक हो जाएंगे और वो मूर्छित हो जाएंगे, प्राण भी त्याग सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, पहले कोई जाए, आगे क्या है, कोई मैसेंजर चला जाए। तो उन्होंने कहा उद्धव तुम तो बड़े प्रिय हो कृष्ण के, कृष्ण ने देखो गोपियों को सांत्वना देने के लिए तुम्हें भेजा था, तुम क्या करो कि जाओ और मैसेज दे दो कि अभी कृष्ण आ ही रहे हैं, पीछे पीछे से आ रहे हैं। उन्होंने कहा मैं गया था एक बार, मिशन फेल हो गया, मिशन अकम्प्लिश नहीं हो पाया, मैं वहां गया, मैंने अभी मैं वहां जाकर अपराधी करने वाला था, अपराध का भागी बन रहा था कि वहां इस संसार में मैं देखता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने पुत्र पत्नी पति बच्चे आदि से आसक्त है, धन आदि से आसक्त है, और जब वो चीजें खो जाती है तो व्यक्ति रोना शुरू करता है। किसके लिए रोता है इस जगत में, इन भौतिक चीजों के लिए। लेकिन ब्रजवासी मैं जब वहां गया वो बाकी किसी चीज के लिए नहीं रो रहे थे, वो किसके लिए रो रहे थे, कृष्ण के लिए। और मैं उनको कहूं कि अरे कृष्ण के लिए क्यों रो रहे हो, तो ये क्या है, फिर किसके लिए रोएंगे, इतना बड़ा अपराध है, कृष्ण के लिए कोई रो रहा है उसको आप चुप करा रहे हो। तो उद्धव ने कहा ये उचित नहीं है और मैं नहीं जा सकता। मैं वहां गया और उनको कहा कि आने वाले हैं कृष्ण, वहां ब्रजवासियों की स्थिति वगैरह कही, तो वो सब मुझे फिर डांटेंगे, कहेंगे तुम तो झूठे हो, झूठी बातें बोलते हो और कहते हो कि कृष्ण आ रहे 6 महीने में या कुछ। नहीं, उन्होंने कहा मेरे वचनों में ये लोग अभी विश्वास नहीं करेंगे, मैं तो नहीं जा सकता। तो फिर उन्होंने कहा बलराम तुम तो इनके बड़े भाई हो, और तुम भी तो गए थे उद्धव के बाद, कहाँ गए थे, ब्रज में गए थे उनको निवेदन करने के लिए, बताने के लिए, तो तुम जाओ। तो उस समय बलराम कहते मैं तो 6 महीने स्टे करके आया था, और मैंने सबको किया था कि अगली बार इनको भेजूंगा किसी भी स्थिति में, और अभी जाऊंगा तो मुझे मेरी खैरियत नहीं है, ब्रजवासी मेरी पिटाई करके भगा भी सकते हैं। उन्होंने कहा अभी मैं नहीं जा सकता। तो मैं आया मथुरा वापस और कृष्ण को बोला कि आप जाओ, अरे ब्रजवासी तुम्हारे विरह में उनका जीवन तप रहा है, तो ये जाने के लिए तैयार ही नहीं, गए नहीं, कभी लेटर भेज रहे हैं, कभी हंस दूत हंस के द्वारा लेटर भेज रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं नहीं जा सकता। तो देखा सुभद्रा देवी ने सुभद्रा को कहा तुम तो बहुत उनकी प्रिय बहन हो। नारद ने कहा तुम तो सब कुछ करने के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा मैं जाऊंगी। सुभद्रा ने क्या कहा, मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा मैं जाऊंगी और मदर यशोदा के गोद में, यशोदा के गोद में बैठूंगी, उनके आंसुओं को पोंछूंगी और उनको दिलासा दूंगी और कहूंगी कि अभी अभी कौन आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि मैं स्त्री हूं तो एक स्त्री का हृदय दूसरी स्त्री जानती है, वो समझ सकती है और वो तैयार हो सकती है, मेरे वचनों में विश्वास रख सकती है। तो सुभद्रा महाराज ने कहा ठीक है मैं निकलती हूँ, मेरे लिए रथ का तैयार करो, क्या करो रथ दे दो मेरे लिए। तो फिर सुभद्रा जा रही है तो बलराम ने कहा मेरी छोटी बहन जा रही है सेवा के लिए, मैं क्या कर रहा था। तो बलराम ने कहा नहीं अकेले कैसे जाओगे तुम, मैं आगे आगे चलूंगा तुम्हारे। तो फिर बलराम भी तैयार हो गए, किसका उत्साह देखकर, किसका, सुभद्रा देवी का। तो बलराम जी बैठ गए रथ के ऊपर और सारे जब रास्ते से जा रहे थे ब्रज की, कहां से निकला था उनका यात्रा, द्वारका से, कहां से, एक तो यात्रा हम जानते हैं कहां से निकला था, कुरुक्षेत्र, दूसरा यात्रा कहां से, द्वारका से। और उस समय श्रीमती राधा रानी बिल्कुल मूर्छित हो गई थी ब्रज में, उनको निधि वन में रखा था, इसके पंखुड़ियों के ऊपर गुलाब की जो पंखुड़ियां हैं, शीतल हो जाए उनका देह, बल्कि वर्णन आता है कि राधा रानी का देह रखने मात्र से गुलाब की पंखुड़ियां सूख गई, इतना विरह ज्वाला कृष्ण के लिए थी। तो ऐसे जब ये निकल रहे थे ब्रश जा रहे हैं हम मैसेज देने के लिए, क्या मैसेज देने के लिए जा रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। तो ये जब बलराम जी आगे आगे गए तो सब जगह बड़ा उनका स्वागत हो रहा था, जैसे अब रथ यात्रा में स्वागत होता है ना आपका, फ्रूटी से होता है, ठंडाई से होता है, समोसे और क्या होता है, इनका ऐसा स्वागत नहीं हुआ था, इनका तो इनके लिए फ्लावर्स की वर्षा हो रही थी, बड़े बड़े गेट्स निर्माण हो रहे थे, ऐसे बड़ा उनका भव्य स्वागत हो रहा था, बलराम जी आगे निकल रहे थे और उनके पीछे कौन थे, लेकिन अभी वो इस रूप में नहीं थे, इस फॉर्म में नहीं थे जिस फॉर्म में अभी हम देखते हैं। उनके बड़ी बड़ी आंखें और उनके हाथ अंदर गए हैं, पांव अंदर गए, सुभद्रा के तो दोनों हाथ नहीं है, बाकियों को तो हाथ है, सुभद्रा देवी को हाथ हमने देखा है कि नहीं कभी सुभद्रा महारानी को, देखा है ना, आया ना जोर से, तो सुभद्रा का हाथ इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो बीच में खड़े थे दरवाजा में, ऐसे कोई ना आए, वो जो द्वारका की एक लीला है, दूसरी लीला, दरवाजे में खड़े थे द्वारका में जो फोन लेक्चर दे रही थी रुक्मिणी देवी, तो ऐसे इधर एक हाथ इधर एक हाथ। बचपन में आप बच्चे होंगे तो गांव में करते बच्चे ना, अंदर नहीं आना देगा, अंदर घर के एक पाव इधर एक पाव इधर, एक हाथ ऊपर एक हाथ ऊपर, तो उनको एक ये ड्यूटी था, कौन नहीं आएगा अंदर, कृष्ण और बलराम, लेकिन उस बेचारे को पता ही नहीं चला, वो इतने मग्न हो गए कृष्ण कथा सुनने में, कौन नहीं मग्न हो सकता कृष्ण के बारे में, तो वो और ये दोनों आके खड़े भी हो गए, कभी स्पेस ही नहीं उसके हाथों को, पाटा गए चले गए अंदर भावावेश में आकर। तो ऐसे जब इनका ये रथ निकला था ब्रज की ओर, तो ये सही रूप में थे, लेकिन जैसे जैसे ब्रज नजदीक आ रहा था, क्या नजदीक आ रहा था, ब्रज भूमि, वैसे वैसे उनका जो ब्रजवासियों के प्रति या कृष्ण के प्रति जो भाव है वो इतना अधिक उमड़ उठा प्रेम, जैसे जैसे आप कार ट्रैवलिंग करते हैं, जैसे जैसे धाम नजदीक आता है ना, जगन्नाथपुरी आ रहा है तो हमें बड़ा आनंद होता है, अभी दिल्ली नजदीक आएगा तो आपको आनंद होगा कि नहीं होगा, टेंशन नहीं, किसको टेंशन होता है, मुश्किल है, दिल्ली नजदीक आए तो हम आनंदित हो जाए, वापिस जाना है, ये करना है, वो करना है, उससे मिलना है, मेल्स करने हैं, कॉलिंग्स करने हैं, अपडेट्स करनी है, तो हमारे लिए धाम नजदीक जाते तो बड़ा टफ है, तो लेकिन जब ये गए दोनों आगे बहुत आगे गए, ब्रज के पास गए ही थे, उनको देखा तो इनका ये रूप नजदीक ही गए थे, तो फिर नारद ने कहा कि अभी समय आ गया है मेरे वीणा का वादन करने के लिए, नारद मुनि बाजाए वीणा राधिका रमन नामे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
नारद मुनि को वीणा भगवान ने गिफ्ट दिया है, तो भगवान की गिफ्ट हमेशा बजाते रहते, छोड़ते नहीं है, अपने कंधे से नीचे रखते नहीं है, तो इस प्रकार से उनके लिए वो भिड़बैग है, क्या है हमारे लिए हम इतनी बड़ी भिड़बैग आपके गले में सदैव रखे जाए, कौन तैयार होगा, आपको काले पूजा में वॉक करेंगे यहाँ से मंदिर के मर्दन गले में रखो, जाते जाते 10 भक्तों को दे देंगे आप, लेकिन नारद मुनि सदैव क्या करते हैं, इतनी बड़ी भिड़बैग और नाम लेते तो किस पे मुंह से लेते, लेकिन साथ साथ वो गिनते नहीं है, उसमें क्या होता है वैरायटीज ऑफ साउंड्स आते हैं, भागवतम के पहले स्कंद में इन चीजों का वर्णन है नारद मुनि के वीणा आदि का। तो फिर नारद मुनि को कहा कि नारद आप अभी ब्रज लीला कहानी का वर्णन करो, ब्रज की लीलाओं का वर्णन करो, और फिर जैसे तुम वर्णन करोगे वैसे कृष्ण उठ जाएंगे, जैसे वो उठे कृष्ण उठे, अभी कोई सो रहा है तो कैसे उठेगा बताइए आप, कोई सो रहा है तो बड़ा आराम आराम से उठेगा, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं था, कृष्ण तो ब्रज के प्रेम में इतने ये हो गए थे, ऑब्जर्व हो गए थे, तो वो डीप स्लीप में भी वो ब्रज में थे, तो जैसे वो सो मूर्छित थे इन्होंने जैसे वीणा बजाई और ब्रज के लीलाओं को गाया, लाउडली गाया, जैसे गाया कृष्ण उठ गए, उठते जैसे है ना ये बोतल ऐसी है, तो ऐसे ऐसे नहीं ऐसे हो गए सीधा, क्या है सीधा, और वैसे भी नहीं कि दो पाव में खड़े हो गए, कौन सा त्रिभंग ललित रूप, भगवान कैसे खड़े रहते कृष्ण, एक पाव उस तरफ होता है त्रिभंग, ऐसे खड़े हो गए सीधा, और बांसुरी तुरंत हाथ में, ऐसे बांसुरी हाथ में नहीं थी, द्वारका में बांसुरी आदि नहीं है उनके पास, और फिर बहुत हो गए मदन मत हो गए, और उनको फिर रोका नहीं जा रहा था और तुरंत ब्रज ब्रज कहते हुए उनको कैसे तो कहाँ रख दिया, उनको रथ के ऊपर रखा, जैसे वो कल रख रहे थे रथ के ऊपर, जैसे रथ के ऊपर रखा। हाँ, फिर जगन्नाथ, जगन्नाथ ने कृष्ण, हाँ कृष्ण निकल पड़े। पहले तो दो लोग गए थे, कौन? बलदेव और सुभद्रा महारानी। तो जैसे ही कृष्ण उनके पीछे निकले, कृष्ण जगन्नाथ के रथ का स्पीड बहुत तेज था कृष्ण के, तो वो गए। और जब ब्रज नजदीक आया, तो जैसे ब्रज नजदीक आया तो इन तीनों के रथ एक साथ हो गए। सोचो ऐसे एक साथ तीनों रथ एक साथ हो गए, 1 2 3, और तीनों बिल्कुल ब्रज के बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी खड़े होकर आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे हैं, और ब्रज का उस दिव्य भूमि आदि और भक्तों को देखकर इन तीनों का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं? इनके अंग संकुचित हो जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि फिर जब ये ब्रज में प्रवेश हो गए और वहां श्रीमती राधिका कृष्ण के विरह में निधिवन में मूर्छित थे, जब देखा कि हवा बह रही है, भगवान कृष्ण के शरीर के द्वारा टच की हुई श्रीमती राधा रानी के नाक से सूंघ लेती है, तुरंत कॉन्शियस हो जाती है। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी बहुत ही विस्तार से इन लीलाओं का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से ये जो रथ है, अलग अलग कारण है कि क्यों बलराम पहले जा रहे हैं, सुभद्रा देवी जा रही हैं, और फाइनली कौन? कृष्ण। वास्तव में रथ यात्रा बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ के लिए जैसे मैंने कल कहा, वो नीलाचल है या वो द्वारका है जहाँ जगन्नाथ टेम्पल है, और जो ये गुंडीचा मंदिर है ये सुंदराचल है। सुंदराचल का मतलब है ब्रजभूमि, वृंदावन है। तो भगवान ब्रज आना चाहते हैं, तो ब्रज आते हैं कृष्ण भक्तों के संग। और भी कई रीजन है कि वहां से जगन्नाथ इधर आते हैं, क्योंकि गुंडीचा से बहुत प्रेम था भगवान का। गुंडीचा महारानी राजा इंद्रद्युम्न और उनकी जो पत्नी है गुंडीचा, तो इंद्रद्युम्न ने तो 3 बार मांगे थे कि मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना विशाल आपका सेवा आदि है, मंदिर आदि है, तो मेरे पुत्र आदि होंगे तो धन पर वो अधिकार जमाएंगे, भगवत सेवा का जो धन संपदा है उसका दुरुपयोग करेंगे अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उन्होंने कहा नहीं चाहिए मुझे संतान। तो फिर गुंडीचा को कहा कि मैं आपका क्या हूँ, आपके मैं आपका पुत्र हूँ, और नाम कृष्ण और बलराम मैं आपके पुत्र हूँ, और हर साल आपके पास आएंगे। कितने दिन रहेंगे आपके पास? 7 दिन, 9 दिन की रथ यात्रा होती है। तो इसी रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा भी कहते हैं, घोष यात्रा भी कहते हैं, रथ यात्रा भी कहते हैं, प्रेम यात्रा भी कहते हैं, ऐसे कई नाम शास्त्र में या आचार्य ने दिए हैं। तो ये भी एक रीजन है, बहिरंग कारण इसको कह सकते हैं कि जगन्नाथ देव यहाँ आते हैं गुंडीचा में, गुंडीचा महारानी को आनंद प्रदान करने के लिए, और इस भावना को प्रदान करने के लिए कि हम आपके पुत्र हैं। और वास्तव में हम गाते ना, त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो इस प्रकार से कृष्ण हमारी माता हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारे बंधु हैं, कृष्ण हमारी बहन है, कृष्ण हमारे सब कुछ है, भगवान कहते हैं। इस प्रकार से क्योंकि बाकी किसी को अपना संबंधी हम बनाते हैं तो वो छूट जाते हैं, कालांतर में क्या हो जाते हैं? छूट जाते हैं। बाकी इस जगत में जो संबंध हम बना रहे हैं कि वैसे ही एक ही गलती से आप किसी डब्बे में आ गए, ट्रेन में, अलग अलग सिटीज में आपने बुक किया था अपना ट्रेन टिकट, और कुछ घंटों के लिए एकत्रित रह गए तो बड़ा फ्रेंडशिप डेवलप हो गया, बड़ा अफेक्शन, कुछ दिन लगा कि अरे हम एक परिवार के, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। लेकिन आ गया स्टेशन, किसी का बेचारा उतर गए पहले, फिर आप भी आगे उतर गए, खत्म। तो वैसे ही है, पहले हमने जन्म लिया, पटरी में ट्रेन का डब्बा है, उसमें एक पहले टिकट किसी ने खरीदा वो आके आ गया, फिर दूसरा किसी ने खरीदा वो पत्नी के रूप में आ गया उसके जीवन में, तीसरे ने खरीदा वो आ गया बच्चों के रूप में, तो पूरा परिवार बस गया। हाँ, तो ट्रेन जा रही है जा रही है जा रही है, फिर अलग अलग स्टेशन आ रहे हैं, स्टेशन आ गए, समय के काल, काल के बाद ही तो समय स्टेशन आता है ना काल, और 10 बज गए हैं अभी भुवनेश्वर आ रहा है। तो उसी प्रकार से है काल, मतलब आयु हो गई है अभी मुझे उतरना है, टाइम आ गया, उतरने का क्या आ गया, टाइम आ गया। तो बेचारा एक शरीर स्मशान में चला जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और उसी को भागवत में कहा है कि जो ट्रैवल करने वाले जो लोग हैं रास्ते में धूप में चल रहे हैं, एक जगह एक प्याऊ होता है, पानी पीने वाला स्थान, तो वह प्याऊ में पानी पीने के एक स्थान में आते हैं, सब एक साथ पानी पीते रहते हैं, थोड़ा सा बातें करते रहते हैं आपस में, थोड़ा सा अफेक्शन एक दूसरे से, मैत्री या थोड़ा सा प्रीति भी विकसित होता है। तो फिर लेकिन उनको पता नहीं कि अभी आधे घंटे के बाद हम सबको क्या होना है, अलग होना है। वैसे ही उसी पावर भागवत में कहा है कि जल में अलग अलग जगह से बहते हुए छोटे छोटे घास के तिनके लकड़ आते हैं, और वो एक कुछ समय के लिए एकत्रित आते हैं ना, बंच हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे जल के साथ वो प्रवाहित होते हैं फिर से हर एक चीज अलग हो जाती है। तो इसलिए हमें तैयार होना चाहिए सदैव इस चीज के लिए कि वास्तव में मुझे कभी भी उतरना है ट्रेन से नीचे। इस प्रकार से जगन्नाथ देव की महिमाएं हैं, और भगवान जगन्नाथ ऐश्वर्य विग्रह नहीं है, भगवान जगन्नाथ कौन है, माधुर्य विग्रह है, वृंदावन के कृष्ण हैं, जिनको देखने में श्री चैतन्य महाप्रभु दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। इस रथ यात्रा में यहाँ तो रथ खींचना बड़ा कठिन है, यहाँ तो तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है, तो लेकिन उसी को प्रैक्टिकली हम ला सकते जब हम इन चीजों को सुनते पढ़ते मनन करते हैं, तो उस मोड को बिल्ड करते हैं और उसी को हरिनाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो वास्तव में हम रथ खींचने का अधिकारी होते हैं। रथ यात्रा महा महोत्सव की
जय,
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की
जय,
जगन्नाथ गुरुधाम की
जय,
चैतन्य चंद्र की
जय,
निताय गौर प्रेमानंद
हरि हरि बोल,
हरे कृष्णा। तो क्या है प्रोग्राम, तभी रथ तो कल रुके हैं दो, तो हम जाएंगे वहां रथ को खींचने के लिए, जब तक भगवान आएंगे जो दिशा वहां तक हम खींचेंगे, उसके बाद हम समंदर स्नान करने के लिए जाएंगे, फिर आके हम स्नान आने के लिए, और फिर 4 बजे के आसपास हम लोकल जो टेम्पल्स हैं, छोटा गोपीनाथ है, हरिदास ठाकुर समाधि है, श्वेत गंगा है, सर्व भट्टाचार्य का घर है, गंभीरा है, सिद्ध बकुल है, जगन्नाथ बल्लभ गार्डन, प्रयास करेंगे अधिक से अधिक स्थानों को दर्शन करने का। हरे कृष्णा, जोर से
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे राम संकीर्तन की
जय।
तो मैंने एक एक्सरसाइज दी है, चाहे आप आज से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, आखिरी दिन में आपसे कलेक्ट करूंगा, या तो 13 को कलेक्ट कर सकता हूँ, पूरी में ही कलेक्ट करता हूँ। अच्छा, हरिदास ठाकुर ने अपना प्लान कहा लिखा था, जगन्नाथ पूरी में, तो आप भी सब लिखी है बिना किसी हिचकिचाहट के लिखी है, वंडरफुल। अब आप अनुभव करोगे कितना ये हो गया है, कितना आपको अलग का महसूस हो रही है, कितना आप कृष्ण से नजदीकी अनुभव करते हैं। पहले तो कठिन होगा कि अरे क्या लिखूं, मेरे लिए इतना कठिन है, और ये मैं स्वतंत्रता दे रहा हूँ, जिसको लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हैं, आपको लगेगा कि नहीं लिखना है मुझे, फोर्सफुली क्यों किया जा रहा है ना, तो आपको फोर्स नहीं है, आप स्वतंत्र जी भाई, भगवान भी फोर्स नहीं करते तो मैं क्यों फोर्स करूँ। तो लेकिन बेस्ट सिंसियर एक्सरसाइज है, बहुत अमेजिंग है, आप चाहे 1 पेज लिखो, 2 पेज लिखो, जैसे मर्जी लिखो, जैसे मैंने बताया था आपको, बताया था कि नहीं, और भी बहुत सारे डेथ प्लान्स हैं अलग अलग लोगों के, हम देखते हैं कि क्या योजना है आप सबकी। हरे कृष्णा।
समुद्र का प्रभु जी थोड़ा सा अनाउंसमेंट कर दो कि
हाँ समुद्र बहुत गहरा है और बहुत घटनाएं हुई हैं। मैं हर समय जो जो घटनाएं हुई हैं उनको बोलते रहता हूँ समुद्र की। समुद्र को तीर्थराज कहा जाता है, बहुत पावन है। समुद्र में किसी भी स्थान में स्नान करना उचित नहीं होता। शास्त्र जहाँ रिकमेंड करते हैं जिस स्पॉट में वहां स्नान करना होता है, तभी आप समुद्र से लाभ प्राप्त कर सकते हो। तीर्थराज इसलिए है कि हरिदास ठाकुर के चरणों को महाप्रभु ने धोया। महाप्रभु ने कहा अब ये तीर्थराज हो गया है, जो भी इस स्थान में आकर यहाँ स्नान करेगा वो कृष्ण के लिए प्रीति को अपने हृदय में जागृत करेगा। और दूसरा कि सारी नदियां, नदियां क्या है, तीर्थ है, तीर्थ जल है। सारी नदियां कहाँ आती है, फाइनली समुद्र में, इसलिए उनको तीर्थराज भी कहते हैं। तो लेकिन जगन्नाथपुरी में स्नान करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु करते थे स्नान, इंद्रदेव महाप्रभु तीन स्थानों में स्नान करते थे। एक तो रोज सुबह स्नान करने जाते थे समुद्र में, और दूसरा इंद्रदम्न सरोवर, और तीसरा नरेंद्र सरोवर, चंदन सरोवर जिसको कहते हैं। जो भी बंगाल से भक्त आते थे चैतन्य महाप्रभु उनको ग्रीट करते थे, उनका स्वागत करते थे नरेंद्र सरोवर चंदन सरोवर के किनारे। उनको माला पहनाते थे गोविंद के द्वारा, स्वरूप दामोदर के द्वारा, या स्वयं चंदन आदि लगाते थे और उनके संग में नरेंद्र सरोवर में जल विहार करते थे, कई घंटों के लिए स्नान किया करते थे। वैसे इंद्रदम्न सरोवर, तो समंदर में हम थोड़ा सा सावधान रहें, और बेस्ट है कि थोड़ा दो तीन डुबकियां लगाओ और बाहर आ जाओ, क्योंकि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और हम सबसे ज्यादा हमें किन चीजों से भय लगता है, पृथ्वी इससे भय लगता है कि नहीं लगता आपको? हाँ, कितना अमेजिंग है ना, उससे बना हुआ शरीर है, क्योंकि उसी से डर लग रहा है, पानी से डर लग रहा है, आग से डर लग रहा है, अर्थक्वेक हो जाए पृथ्वी गिर जाए मेरे सर में, उससे डर लग रहा है, वायु से डर लगता है हमें, तीन सब चीजों से। तो जल से भी हमें डर लगता है, बल्कि जल ही जीवन है, लेकिन जल ही आपका क्या कर सकता है, जीवन ले सकता है। जैसे पिछले साल दो माताएं यंग माता जी वहां की थी बांग्लादेश की, वो आई थी कार्तिक में, तो दो माता जी ने कार्तिक का पूरा वो जो ब्रज मंडल परिक्रमा किया, दो मित्र थी। और फिर जैसे वो कार्तिक परिक्रमा खत्म होती है उसके एक कुछ ही एक दो दिन में यहाँ शुरू हो जाती है, कुछ ही दिनों में यहाँ जगन्नाथपुरी परिक्रमा शुरू हो जाती है, एक दिन की होती है और बहुत अच्छी है। तीन दिन का फेस्टिवल होता है जगन्नाथपुरी का, तो उसमें एक दिन होता है कि पूरे जगन्नाथपुरी का परिक्रमा होता है और बहुत अमेजिंग है, मैंने एक ही बार अटेंड किया था। तो वो जो दो माता जी, क्योंकि जब परिक्रमा खत्म होता है सुबह 5 बजे शुरू करते हैं और 12 बजे तक परिक्रमा खत्म हो जाता है, फिर सारे सन्यासी प्रभु जी माता जी सब हरिदास ठाकुर का जो एरिया है वहां क्या करते, स्नान करते हैं। तो ये माता जी भी स्नान करने लगी, स्नान करते करते एक एक गलती से आगे चले गए, उसको बचाने चले गए, तो वो भी उसके साथ चले गए, और तीसरी अननोन माता जी उसको पकड़ने गई, तीनों चले गए तो वापस नहीं आए। शाम के समय तीनों का बॉडी आया बाहर, तो इसलिए है क्योंकि ये वेव्स आपको क्या करती है, ऊपर से बाहर लाती है लेकिन नीचे से आपके पाँव के नीचे से बालू लेती है और आपको ले जाती है। इसलिए हमें चैलेंज नहीं देना है, जस्ट हम सिंपल स्नान करें, क्योंकि हम अपने शुद्धि के लिए स्नान कर रहे हैं। एक तो है इंद्रिय तृप्ति के लिए, आनंद के लिए, या अचीवमेंट, दिल्ली में जाके बताना है हमने तो कितना समुद्र में स्नान किया। स्नान करोगे लेकिन शुद्धि नहीं होगा, महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। महाप्रभु चाहते थे स्नान करना मीन्स प्योरीफाई हो जाएगा हृदय आपका, हरिदास ठाकुर का स्मरण करते हुए आदि। तो फिर दूसरी घटना, हमारे ब्रह्मचारी थे, हमें दिल्ली में था तो वहाँ एक डिवोटी थे, मैंने कहा कि आप इन भक्तों को लेके पूरी ले जाओ, डिवोटी थे नायक कुशेश, तो उनको कहा कि आप एक साथ हर भक्तों को ले जाओ। तो वो एक नया भक्त ज्वाइन करने वाला था तो उनको भी ले गए, बड़े अच्छे लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो ये तीन डिवोटीज आए इधर स्नान करने लगे और जो ब्रह्मचारी भक्त था वो तो थोड़ा सा स्नान करके बैठा था। ये दोनों नए नए थे, बहुत जोश। तो फिर उन्होंने ये क्या किया, अंदर गया थोड़ा सा और फिर दोनों अंदर घुसे। एक तो गलती वो जो लोग थे उन्होंने बचाया और दूसरा अकेला था वो माता पिता को, देहरादून से था वो डिवोटी और वो फुल टाइम ज्वाइन करने वाला था और वो फिर चला गया तो चला गया वापस में आया। मतलब जगन्नाथपुरी विजिट के बाद वो दिल्ली टेम्पल ज्वाइन करने वाला था एज ए ब्रह्मचारी। अब वो गया तो फिर उसका बॉडी ढूंढने के लिए फिर छोटे नाव वगैरह लाए, ढूंढा नहीं, फिर फाइनली उसका बॉडी यहाँ से कई किलोमीटर दूर आप कोणार्क जाते हो वहाँ साइड में पड़ा हुआ था। हम नाव से जो गए हैं मोटर बोट से, हम पीछा पीछा किसी ने खा लिया था, बहुत पेनफुल। तो उसके माता पिता को वो बताया, अकेले अकेला लड़का था, बहुत अच्छा योगी था, बहुत उत्साहित था सेवा में। तो फिर उनकी माता मदर नहीं मदर तो नहीं आनी फादर फिर आए बॉडी ढूंढा अंतिम संस्कार नहीं थी। इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ क्योंकि तो बहुत हैवी स्टोरीज बता रहा हूँ, हाँ लेकिन नहीं ये रियलिटी है। इसलिए हम रिस्क ना लें या ऐसे नहीं। और हर साल जो यात्रा होती है उसमें एक घटना निश्चित होती है पूरी में इस्कॉन की यात्रा में। तो मैंने फर्स्ट टाइम यात्रा में आया था तो उस समय पहली वो यात्रा इस्कॉन ने शुरू की थी 2005 में शायद, तो उस समय तो कोई इंसिडेंट नहीं हुआ लेकिन उसके बाद अभी तो 10,000-5,000 इस्कॉन डिवोटी आते हैं इसमें, तो हर साल कोई ना कोई चला जाता। तो हम जब जाए थोड़ा सा डुबकी लगाए, प्रणाम करें, पानी डालें और भागे, ज्यादा ये ना करें। आप थोड़ा आगे जाओगे देहरा चले जाओगे। इसलिए समंदर से कभी रिस्क मत लो, कितने भी आप बड़े तैराक क्यों ना हो। सचिन नंदन महाराज ने अपना एक लाइफ स्टोरी बताया था, उन्होंने कहा कि मैं अकेला एक जगह गया जर्मनी में और वहां लिखा था कि यह स्नान नहीं करना चाहिए समंदर में। उन्होंने कहा मेरे जैसा तैराक कोई नहीं है। क्या रिसेंटली उनके जीवन में घटना हुई थी कुछ साल पहले शायद 2005 या 2006। तो सचिन नंदन महाराज कह रहे थे कि मैं फिर तैरने लगा, वो बड़े अच्छे स्विमर है, तो वहां वो वेव्स उनको अंदर ले गई, ले जा रही थी और ये रोने लगे और इतना आगे डूबने लगे कि ब्लड आने लगा मुंह से और वो सोचने लगे, खुद को कहने लगे, सचिनंदन स्वामी तुम तो इतने बड़े स्वामी हो और अकेले अभी मरना पड़ रहा है कहां,
समंदर
में। तो कहते मैंने जितना भी मेरे हृदय में ये था अभी बाहर निकालने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं थी रियली। वेव्स में मैं डूबते जा रहा था, आंखों से आंसू भी आ रहे थे और लग रहा था कि अभी फाइनल क्षण है, मैं मरने वाला हूँ। मैंने रियली चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण को प्रार्थना किया और बहुत अपना सारा हृदय डाला उसमें और फिर देखा मैं डूबते हुए ना साइड में आ गया। वो कह रहे थे कि मैं जब डूब रहा था वहां फाइनली जो ब्लड भी आ रहा था तो कह रहे थे सचिनंदन स्वामी तुम्हें तो भक्तों के बीच में मरना चाहिए, तुम्हें तो वृंदावन में मरना चाहिए था, यहाँ वेव्स में समंदर में आके कहां मर रहे हो। तो कह रहे थे अपना रियलाइजेशन बता रहे। इस प्रकार से हम कभी भी ये नहीं करना चाहिए, चैलेंज नहीं, सर्विस एटीट्यूड। हर एक्टिविटी के पीछे क्या होना चाहिए, सेवा की भावना। चाहे हम स्नान कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, रक्त यात्रा में जा रहे हैं, तो फिर ठीक है। तो ऐसी कई घटनाएं भक्तों के जीवन में, फिर आपको ये अपॉर्चुनिटी है आज स्नान करने का। तब इतना जोश मत दिखाइए कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ और बहुत बड़ा दिल्ली का तैराक हूँ और आई एम स्पेशल। स्पेशल नहीं चलेगा, आप कुछ लोगों के लिए स्पेशल दिखाओगे लेकिन फिर कृष्ण के सामने आप स्पेशल नहीं हो। तो हमेशा सोचो कि मैं स्पेशल नहीं हूँ, स्पेशल कौन है, कृष्ण है और उनके महान भक्त हैं। तो उनका पोजिशन लेने का प्रयास किया तो आपकी कुछ ये नहीं है, क्या कहेंगे, कैरियर नहीं है। डोंट ट्राई टू डिवोटीज का पोजीशन को हड़पने का प्रयास मत करो, स्पेशल पोजीशन और कृष्ण का स्पेशल पोजीशन इसलिए यशोदा माता बनने का प्रयास मत करो या श्रीमती राधिका बनने का प्रयास मत करो, क्या बनो? गोपी भरतुर पद कमल और दास रासानु दास। हाँ बस हमें कुछ और नहीं बनना है। अये नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवामुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं। मैं तो आपके धूलि का चरण में जो धूलि है उसका कण बनना चाहता हूँ। इसी को मां प्रभु ने कहा गोपी भरतुर पद कमल और दास रासानु दास। इस सरल वृत्ति हमें डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए। हमें कोई बड़ा भक्त बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लगे कि नहीं मुझे बिग डिवोटी बनना है सबके आंखों में, नहीं। हमें तो ये प्रयास करना चाहिए कि मैं कैसे छोटा सा छोटा भक्त बनने का प्रयास करूं। कृष्ण के आंखों में वो क्या है? बहुत बड़ा है, ग्लोरियस डिवोटी है। इसलिए ये सब भौतिक आकांक्षा है कि मुझे बहुत बड़ा प्रचारक बनना है, बहुत बड़ा वक्ता बनना है, बहुत बड़ा सिंगर बनना है, बहुत बड़ा डांसर बनना है, बहुत बड़ा बड़ा बनना है। बड़ा काम नहीं है, आपका जो बड़ा खाने में जाएगा। कृष्ण भक्ति आपसे दूर, लोग आपको मैं भी बहुत खिलाएंगे पिलाएंगे, आप बहुत अच्छे गाते हो, बहुत अच्छे बोलते हो, बहुत अच्छे नाचते हो, बहुत एक्सपर्टीज है, बहुत बड़े प्रचारक हो, लेकिन कृष्ण की आंखों में आप नहीं आओगे, कृष्ण से दूर बन रहे हो। इसलिए भक्ति में जीवन में हाँ कई बार यही होता है, जनरली मैंने देखा है कि वट इज हमेशा बिग थिंग बिग, छोटा थोड़ी बनने के लिए हम इस मोमेंट में यहाँ, हम अपना पोजीशन साबित करना है यहाँ आकर, अपना भी तो कुछ ही होना चाहिए ना स्टैंडर्ड, एंड अपना भी प्लेटफॉर्म होना चाहिए दैट पीपल कैन अप्रिशिएट एंड पीपल कैन ग्लोरीफाई। तो ऐसी सिचुएशन रहती है, वो भक्ति भूल जाता है, भक्ति तुरंत हृदय को छोड़कर चली जाती है। इस भावना से भक्ति हृदय में निवास नहीं कर सकती, भक्ति क्योंकि जैसे ये सब भावनाएं आए तो भक्ति निवास नहीं करेगी, भक्ति के लिए वो उचित स्थान नहीं है, हृदय में निवास करेगी, भक्ति हमारे हृदय को छोड़ के चले जाएगी। और हम केवल लोगों के नजरों में बड़े डिवोटी हो सकते हैं, बड़े सिंगर हो सकते हैं, बड़े कुक हो सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हो सकते हैं, लेकिन भगवान की ईश्वर का भक्ता है कृष्ण है, उनकी नजर में हम पड़े नहीं रहेंगे, सीक्रेट यही है। इसलिए राजा कुरुक्षेत्र ने भगवान को प्रार्थना की, उन्होंने उस श्लोका में कहा तव भृत्य, आपका भृत्य मीन्स दास, तो वो भृत्य शब्द उन्होंने लगभग 9 या 12 बार लिखा है उस श्लोक में, एक श्लोक बोला, श्लोक में होते ही कितने वर्ड्स हैं, लेकिन इतना मेलेडियस और इतना परफेक्शन है उस श्लोक में टीचिंग, तो उस श्लोक में लगभग 9 या 12 बार मुकुटमाला स्तोत्र में वो श्लोक आता है, प्रभुपाद का प्रिय ग्रंथ था, तो उसमें ये श्लोक आता है तव भृत्य, आपके भृत्य के भृत्य के परिचारक तव भृत्य, ऐसा 10 बार बार आप बोल रहे हैं, वो उच्चारण करने में इतना अच्छा लगता है। और महाप्रभु ने भी बोला क्या, गोपीर भरती पद कमलय दास दासानु दास, तीन चार बार बोलना है, वही है। तो बड़ा भक्त बनना मीन्स क्या बनना, छोटा छोटा भक्त बनना ऐसे नहीं हो सकता, आप नेचुरली ग्लोरियस हो जाओगे। प्रभुपाद ये प्रयास नहीं कर रहे कि अभी अमेरिका जाता और दिखाता हूँ, हम पूरे विश्व को कृष्ण भावना में करना था, फिर देखो मेरी ग्लोरियस नहीं। प्रभुपाद गए वो तो छोटी से छोटा सेवा अपने गुरु कृष्ण वैष्णव के, उन्होंने तो क्या क्या नहीं किया। उन्होंने एक बार प्रभुपाद व्यास आश्रम में बैठे थे, तो वह देखा कि एक माता जी पोछा हाथ में लेके घूम रहे हैं, अमेरिकन, उसको पोछा लगाना पता ही नहीं है। अमेरिका में प्रभुपाद कई घटनाएं तो ऐसे ऐसी हुई प्रभुपाद के साथ, हंसते हंसते पागल हो जाएंगे, जो हमारे लिए नेचुरल है वहां के लिए क्या है अननेचुरल है। अभी वो माता जी पोछा लेके प्रभुपाद ने कहा रुको रुको बाल्टी, व्यास आसन से उतरे आचार्य महान जगत गुरु, और क्या लिया उस माता जी के हाथ से, पोछा लिया, और पूरा एक रूम इतना था कैसे पोछा लगाना है, फिर बिछड़ो, ऐसे पानी में इसको ये करो, फिर सुखाओ, फिर ये कराओ, ये सब चीजें आचार्य। एक बार वो तो बड़ा कॉमेडी है, निवृत्ता में थे प्रभुपाद, तो एक बार भूरीचंद प्रभु प्रभुपाद के शिष्य है, न्यू वृंदावन में सुबह सुबह प्रभुपाद लोटा निकल पड़े थे। लोटा हाथ में होता है इसलिए, तो इसका मतलब क्या है, अटेंडिंग नेचर कॉल अटेंड करने के लिए जा रहा हूँ। अभी जो विदेशी भक्तों को पता नहीं कि इसमें क्या होता है, उनको तो अटैच्ड बाथरूम पता है, डिटैच्ड बाथरूम पता नहीं है, सब कुछ अटैच्ड हो गया। तो प्रभुपाद उठे हैं सुबह और लोटा ले लिया और निकल रहे थे ना। न्यू वृंदावन तो फॉरेस्ट है, थोड़ा जंगल वगैरह है, तो नेचुरली स्टोर पास करने के लिए, नेचर फॉल अटैक करने के लिए। तो उस समय ये जो भूरीचंद प्रभु थे, इनको कल रात फोन आया था कि इमरजेंसी बेटी जी के लिए फोटोग्राफ चाहिए। रात को उनको ये मैसेज मिला था, उन्होंने कहा बेटी जी मैगजीन के लिए फोटोग्राफ भेजना है, तो उन्होंने कहा सुबह सुबह फोटो खींचता हूँ। तो प्रभुपाद वॉक कर रहे थे, अभी गए नहीं थे उस्ताद, वॉक कर रहे थे, एक कैमरा लेके प्रभुपाद के पीछे। तो प्रभुपाद ने कहा दिस इज नॉट राइट टाइम, ये उचित समय नहीं है फोटोग्राफ का। तब उनको पता चला ने समथिंग ना डिफरेंट, तो फिर वो चले गए। फिर प्रभुपाद ने समझाया, सोचो प्रभुपाद के जीवन से तो मूड क्या था प्रभुपाद का, हमेशा अपने आध्यात्मिक गुरु का छोटा सर्वण कृष्ण का। लेकिन जब छोटा सर्वण बनने का प्रयास करते हो कृष्ण के आंखों में, वैष्णव के गुरु के आंखों में सर्वोत्कृष्ट होते हैं। इसलिए देखो कल हमने देखा कि जगन्नाथ का जो राजा है, राजा की क्या कर रहा था, जगन्नाथ को झाड़ू लगा रहा था। चैतन्य महाप्रभु राजा की किसी भी क्वालिटी से इतना अट्रैक्ट नहीं हुए। सीसी में इस रथ यात्रा का जो चैप्टर है उसमें आता है कि महाप्रभु ने जब देखा रथ के नीचे कि राजा प्रताप रुद्र झाड़ू लेकर सफाई कर रहे रथ का नीचे, तो महाप्रभु बहुत उनका हृदय पिघल गया कि ये कृपा का पात्र है, नीचे से नीचे सेवा। अभी राजा है उसको क्या जरूरत है झाड़ू लेके, वो तो कहेगा मेरे ने ना जगन्नाथ के साथ आसन लगाओ, तो मुझे भी देखें। अभी हमें रथ यात्रा का भाग लेने का मौका मिलता है, आपको रथ के ऊपर तो आप जगन्नाथ के सामने खड़े हो जाते, कि मैं भी रथ के ऊपर था, सारे मेरे फोटो आने चाहिए, तो ऐसी भावना। लेकिन राजा ने क्या किया, रथ के उसको झाड़ू लगाया, नीच से नीच सेवा। फिर राजा को झाड़ू हाथ में लेना कितना है कि उसके पद से गिरने के समान है, लेकिन कृष्ण की सेवा के लिए वो इस प्रकार की सेवा को स्वीकार करते हैं। तो एक छोटी सी चीज के लिए महान भक्त वो बने राजा प्रताप रुद्र, कृष्ण की नजरों में भी जगन्नाथ के और श्री चैतन्य महाप्रभु के, उनकी इस सेवा का बहुत लोग गुणगान किया है। कहने के झाड़ू मारने की सेवा बहुत नीच है और पेन लेकर किताबों लिखने की सेवा बहुत बड़ी है, नहीं दोनों सेम है, दोनों से क्या कर रहे हो आप, कृष्ण का गुणगान कर रहे हो। इसलिए क्योंकि सेवा कृष्ण से कनेक्ट हो गई है, कोई भी कार्य कृष्ण से कनेक्टेड है तो वो ग्लोरियस है। आप उसको करते हो बिना हिचकिचाहट के, अपने किसी रिजर्वेशन में इसमें लगो, हिचकिचाहट, हम हिचकिचाहट हो जाते ना, अरे उठाओ कि नहीं उठाओ, साउंड सिस्टम के सर में लोग देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। कई बार ये करो या नहीं करो, झाड़ू लगाओ या नहीं लगाओ, पोछा लगाओ, बहुत लोग प्रसाद ले लिया पोछा नहीं, थोड़ा सा स्किप करता हूँ, बहाना बनाता हूँ, हाथ धोते रहता हूँ, दूसरा लगाएगा पोषक अक्षर। हम क्या करते हैं, ये करना चाहते हैं स्किपिंग, हम बहाने ढूंढते हैं, कृष्ण भी बहाना ढूंढेंगे आपको इस मटेरियल वर्ल्ड में रखने के लिए। कृष्ण वैसे ही बहाने देते हैं ब्रज में, तो कितने एक तो बहाना दे के आए कि मैं बस आ ही रहा हूँ मथुरा से, इतना बड़ा बहाना कि पूरा ब्रज रो रहा था, उस एक छोटे से बहाने में कितने सारे लीला हो गए। तो भगवान तो ऐसा छोटा सा बहाना देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, इस भौतिक जगत में आप 84 लाख यानी में भ्रमण करते रह जाओगे। हिचकिचाहट नहीं, क्या करना, जंप लगाना, क्या करना, जंप मारना उत्साह के साथ, तो वो फिर प्रसन्न कर सकते हैं। बोलो कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। तो आपको शेड्यूल समझ में आ गया, तो हम अभी जाएंगे प्रसाद वगैरह सर्व करें, ब्रेकफास्ट यहाँ ब्रेकफास्ट खिला रहे कि नहीं आज फास्टिंग। हाँ, किसको चाहिए ब्रेकफास्ट? क्या करना चाहिए,
यहाँ ले आए या वहाँ ले जाए, देख लीजिए क्या प्रैक्टिक करना है। अच्छा, रथ तो उधर ही है ना, जगन्नाथ।